हेलो हेलो।
गो अहेड रिजुल।
हाँ जी अनुभव जी, 1 मिनट, रिजुल इज टेकिंग अटेंडेंस।
ओके तो कौन है? आप
हम
कृपया
हैं
बताएं
नियति
कौन कौन लाइन पर है।
नीरज
समीर रेजल
लगता है आज सिमोन जी नहीं आए हैं।
Manas is here as well. Dia, are you there,
हाँ
Dia?
हाँ दिया तेजल एंड सचिन।
और कौन कौन है लाइन पर? नियति आंटी हैं, ज्योत्सना आंटी
अप्रीति
हैं, विधि दीदी हैं और
सिमोन।
अच्छा सिमोन है। अच्छा सॉरी सिमोन, हमें मालूम नहीं था आप आ गए।
नो नो आई जस्ट स्टेप्ड अवे सो आई एम बैक। इट्स जस्ट मी, नो अर्जुन, जस्ट सिमोन।
ओके
अगर कोई और है तो बताइए आप, नहीं तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। अनुभव जी, इट इज ऑल योर्स।
ओके चलिए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। दिया आप मंगलाचरण करेंगे आज?
हाँ
ओके हम सब हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और दिया मंगलाचरण करते हैं।
नमो सेधानम नमो हरियानम नमो वजायानम नमो योषवसाहुनम ओम नमो हरिहंतानम नमो सेधानम नमो हरियानम नमो वजायानम नमो योषवसाहुनम ओम नमो हरिहंतानम नमो सेधानम नमो आयरियानम नमो अजायानम नमो लोए सवसाहुनम न भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रियोग समारिके।
थैंक यू। अभी तक हमने जितनी चर्चा कर ली है, हम अभी 4 कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? 4 गाथाएं इसके कंप्लीट हो गए। एक श्वास में 10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुक्पार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो। सबको यहाँ तक याद हुआ?
हाँ जी
हमने नहीं
हाँ
किया।
जी
अच्छा किस किस को याद नहीं है, सिर्फ वो बताइए।
नियति मैंने याद नहीं किया है।
और कौन है?
प्रीति मैं साथ साथ बोल सकती हूँ, अपने आप अकेले नहीं बोल सकती।
ओके और कौन है?
अनुभव जी दिस इज सिमोन। अनफॉर्चुनेटली आई हैव ऑल्सो नॉट हैड अ चांस टू मेमोराइज इट।
ओके 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 और एनीवन एल्स? ओके सो वी हैव ओनली
हाँ अनुभव जी, दिया
चलो बहुत
तेजल एंड सचिन, हमको भी
सचिन।
पूरी गाथा सब नहीं आती है।
ओके 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 अच्छा बच्चों में सबको आती है? ब्रिजुल मानस?
हाँ जी
हाँ जी
ओ ओके समीर आपको भी?
हाँ जी
ओ वेरी गुड। ओके तो आप सब एक बार सब बड़े लोगों को रिवाइज करवाओगे? हाँ ओके समीर आप सबको रिवाइज करवाइए गाथा एक से मंगलाचरण से स्टार्ट कीजिए. हाँ ओके समीर एक बार बोलेगा फिर हम सब उसके बाद बोलेंगे. ओके तो समीर एक गाथा बोलेगा फिर हम वही गाथा बोलेंगे सब उसके बाद फिर हम आगे आज चर्चा करते हैं. ओके समीर स्टार्ट.
नीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारिते जय त्रिभुवनम.
समीर 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 प्लीज. हाँ अब हम लोग बोलेंगे. चलिए तीन भुवन में सार बोलिए.
शिवस्वरूप शिवकार
त्रिभुवन में जीव अनाम सुख चाहे दुख दे भयवान साते दुख हारी सुख पार
श्री त्रिभुवन में जीव अनंत सुख सेकंड 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 गाथा समीर ताही सुनो.
जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो नाहि भूली आप को परमतवाजी.
ताही सुनो
चुनाव विमान तेरा आन जो चाहो.
अरे सब लोग बोलिए.
ताही
सुनो विमान तेरे
आन जो चाहो अपनो कल्याण ओ महामद पियो अनाहि
सुब्रमण की है बहु कथा से कछु कहो कही मुनि जथा काल अनंत निगोद मंजार नित्यो एक इंद्रिय तमसार.
सुब्रमण
की है बहु कथा कछु कहो कही
काल अनंत निगोद मंजार नित्यो एक इंद्रिय तमसार.
भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वन प्रपति भयो.
एक श्वास में अठ दस बार जन्मो मर्यो
मर्यो भयो दुख भार. निकषी भूमि जल पावक भयो प्रत्येक वन सपति थयो.
ओके एक्सेलेंट थैंक यू समीर. ओके अभी किसी को इन चार कथाओं में किसी को किसी में भी दिक्कत है? इन चार छंद अभी तक हमारे हुए किसी का कोई भी क्वेश्चन है?
नहीं.
किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ अजीब लग रहा हो? आगे बढ़े फिर हम आज. हेलो सचिन जी, तेजल जी, कोई क्वेश्चन है?
नहीं अनुभव जी.
नहीं, किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? सिमोन जी,
अनुभव जी अभी तक नहीं. थैंक यू.
ओके ओके ओके, ठीक है. तो हमने जो बात शुरू करी थी कि इस तीन लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, त्रिभुवन, इसमें अनंत जीव हैं और वे सभी स्वभाव से ही ये चाहते हैं कि मुझे सुख हो और दुख ना हो, क्योंकि उनका सुख स्वभाव है. उनकी आत्मा आनंद कंद होने से उनका स्वभाव ही आनंद रूप है, तो वो आनंद की ही इच्छा करते हैं. तो वो सुख स्वभाव ही होने से दुख से तो डरते हैं और सुख को चाहते हैं. इसके लिए आचार्य देव यहाँ पर दुख को दूर करने वाली और सुख को करने वाली सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमको टीचिंग्स दे रहे हैं. वो उसको हमको तभी सुनो भवि मन थिरान, हमको अपने मन को स्थिर करके सुनना है कि कौन हमको उन उन सभी जीवों को जो अपना कल्याण, अपना हित चाहते हैं, जो अपना अच्छा होना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि अब वो गलती क्या हुई, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, जो हमें शिक्षा करनी पड़ रही है कि हमने मोह रूपी महान मदिरा उसको अनादि से पी और उसके कारण क्या हुआ, हम अपने सुख स्वभाव को भूल गए. तो हमें लगा कि बाहर में दुख ही दुख है और हम फिर सुख की इच्छा करने लगे, तो हम अपने आप को भूलने से दुखी हुए. हमारे उस भूलने के कारण हमारा भ्रमण हुआ और उस भ्रमण की कहानी, कथा बहुत बड़ी है. जैसी अनंत मुनि राजों और सर्वज्ञ देव ने बोली, वैसी की वैसी यहाँ पर मैं दौलत राम, मैं पंडित दौलत राम कहूंगा. अब वो कहानी स्टार्ट होती है कि मैंने अनादि काल, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, उतना काल कहाँ बिताया, नित्य ने गोद में बिताया. कैसे शरीर धारण करके, वहां पर एक इंद्रिय शरीर धारण करके मैंने वो काल बिताया. उधर पर एक श्वास में, एक ब्रीदिंग जो हम करते हैं, एक श्वास, एक जो अलग उससे श्वास से हम समय को नापते हैं, लाइक हमारे पास एक समय होता है, एक सेकंड होता है, ऐसे एक श्वास होता है. एक श्वास में मैंने 18 टाइम्स, 18 बार जन्म लिया और मरण किया, जन्म लिया और मरण किया. वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी मेरे पास, एक शरीर था, उसमें अनंतानंत जीव एक साथ जन्म लेते थे, एक साथ मरण करते थे, एक साथ जन्म लेते थे, एक साथ मरण करते थे. फिर मैं वहां से निकलकर भूमि हुआ, वाटर जल हुआ, अग्नि हुआ, एयर पवन हुआ, वनस्पति हुआ, ये वेजिटेबल्स हुआ. ऐसे मैंने एक इंद्रिय जीवों के अलग अलग जाति के शरीर धारण किए और यहाँ पर, यहाँ तक मैंने क्या किए, एक इंद्रिय जीवों के दुख भोगे. ओके, एक इंद्रिय जीवों के दुखों में क्या मुख्य लिया, अब मानस एक इंद्रिय जीव जो होते हैं उनको मूल दुख किस बात का है? सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है उनको? उनको स्कूल जाना पड़ता है?
नहीं.
रिजुल, अच्छा उनको कोई डांट लगाता है, उनको जबरदस्ती किसी क्लास में आना पड़ता है?
नहीं.
नहीं.
पक्का? तो फिर उनको क्या दुख, उनको कोई खाना नहीं देता है कभी? क्या दुख है उनको, केंद्रीय जीवों को? हमने भी एग्जाम्पल लिया था, किसी के हाथ पैर हम बांध देंगे, कुछ रिकॉल हुआ?
हाँ
बताओ क्या. हाँ
वो बात नहीं कर सकते खाली।
वेरी गुड वेरी गुड, बताओ।
और उनका कुछ वैल्यू भी नहीं,
उनका कुछ वैल्यू भी नहीं है। वेरी गुड। वैल्यू कैसा वैल्यू? वो कहीं के प्रेसिडेंट नहीं है ऐसा वैल्यू के कैसा वैल्यू? हाँ, उनको कोई जीव नहीं मानता, राइट? उनको कोई जीव ही नहीं मानता, इसलिए उनका जीव जैसा वैल्यू ही नहीं है, करेक्ट? हाँ, ओके, वेरी गुड। अब देखो, एक सिंपल है, वो जीव है कि नहीं है? एक इंद्रिय वाले?
हाँ जी,
जीव है, बराबर। अच्छा, तो जीव किसे कहते हैं दिया? जीव किसे कहते हैं? बोल, जीव किसे कहते हैं? जीव कौन होता है?
लिविंग बीइंग।
लिविंग बीइंग, ओके। सिमोन जी, जीव किसे बोलेंगे? उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जीव मीन्स व्हाट?
जीव माने आत्मा, जिससे आत्मा होता है।
हाँ, ये तो उसका दूसरा नाम हो गया। आई एम आस्किंग व्हाट इज द डेफिनेशन। आप उसको कैसे कहोगे कि ये जीव है?
जीव जैसे ज्ञान होता है।
Exactly, जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसे जीव कहते हैं, बराबर। जीव की डेफिनेशन है जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, मतलब सिंपली जो जानता है, देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, उसको जीव कहते हैं। किसे जीव कहते हैं? रिपीट करेंगे एक बार, जो जानता है, देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। किसे जीव कहते हैं?
जो जानता है, जो देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है।
एग्जैक्टली। दिया, किसको जीव बोलेंगे?
जो जानता है।
दिया,
हाँ। जो देखता है।
हाँ।
जो सुख दुख का,
उसको अच्छा बुरा लगता है, सुख और दुख का अनुभव करता है। हम जब सिद्ध भगवान बनेंगे तो सुख किसको होगा? हमको होगा कि किसी और को होगा? समीर, जब आप सुख सिद्ध भगवान बनोगे तो सुख किसको होगा? आपके पेरेंट्स को होगा कि आपको होगा?
मुझे,
आपको होगा। एग्जैक्टली, क्यों? आप सुख का अनुभव करोगे। और अभी आप कहीं पर गिर जाते हो, स्लिप हो जाते हो, तो लगती किस पे? दुख का अनुभव किसको होता है? आपको होता है कि पेरेंट्स को होता है? आपको होता है। तो आप सुख का भी अनुभव करते हो, दुख का भी अनुभव करते हो। आपको अच्छा भी लगता है, आपको बुरा भी लगता है। तो ये जीव की डेफिनेशन है। आपकी यदि क्रिकेट बॉल गिर जाए या फुटबॉल गिर जाए, उसको सुख दुख होता है क्या? उसको बुरा लगता है आप इतनी तेज उसको किक मारते हो तो? बोलो, बुरा लगता है। अच्छा, आप स्लिपर्स पहनते हो, शूज पहन रहे हो, पहनते हो, तो उनको बीच में कभी कुछ लग जाए तो उनको बुरा लगता नहीं लगता है शूज को?
नहीं,
नहीं लगता है। क्यों? कि वो जीव नहीं है। जीव उसे कहते हैं जिसको सुख और दुख का अनुभव हो, करेक्ट? देखो, मेन डेफिनेशन इज जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो लेटर स्टेज है। अब एक इंद्रिय जीव भी जीव है, उनको भी जानना देखना स्वभाव है। अब उनको जानना है क्योंकि वो जीव है, लेकिन उनके पास एक ही इंद्रिय है, वो जान ही नहीं पा रहे। उनका स्वभाव नेचर तो जानना है, लेकिन वो जान ही नहीं पा रहे। इसके लिए उनका स्वभाव नहीं प्रकट हो पा रहा, इसका उनको अनंत दुख है। उनको बहुत सारा दुख है। अब मेरा स्वभाव जानना है और मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे इस कारण अनंत दुख है। वहीं पर अब मेरे को सम्यक दर्शन तो वहाँ है नहीं, तो इस कारण अब मैं जब जान नहीं पाता हूँ तो आकुलता करता हूँ। मुझे जानने की इच्छा होती है तब मिथ्यात्व का बहुत तीव्र उदय होता है, तब एकेंद्रीय जीवों की तीव्र कषाय पाई जाती है। तो उनको अब जान नहीं पा रहे तो आकुलता है, आकुलता है तो उनके गंदे परिणाम होते हैं, अच्छे परिणाम नहीं होते, तो फिर उनको तिरंच आयु का बंध हो जाता है, फिर वो तिरंच एकेंद्रीय गति में जन्म लेते हैं, फिर उनके गंदे परिणाम है, फिर वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे, फिर उनको तिरंच एकेंद्रीय पर्याय का बंध हुआ, तो वो वहीं पर जन्म लेते हैं, वहीं का बंध करते हैं, फिर वहीं पर मरण करते हैं। जन्म लिया त्रेंच आयु बंधी फिर मरण किया, जन्म लिया त्रेंच आयु ली फिर मरण किया, जन्म लिया त्रेंच आयु ली फिर मरण किया, तो वहीं पर जन्म लिया, वहीं पर दूसरी गति का बंध किया और फिर वहीं पर जन्म लिया, ऐसे होता है उनका। तो उनको स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता इतना ज्यादा, इसका दुख है। ओके ओके, इधर तक सबको समझा? एक इंद्रिय जीव को क्या दुख है?
Can you
please repeat?
हाँ?
Can you please repeat yourself?
हाँ। ओके, समीर और क्या दुख है उनको, एक इंद्रिय जीवों को, निगोजिया जीव को? हेलो, हाँ,
18 बार एक सांस में मरते,
एक श्वास में जन्मते हैं, बराबर है। निगोदिया जीव को हो गया, तो निगोदिया जीव की बात हुई। अब वाटर भी है, एयर भी है, फायर भी है, ये भी तो जीव है, इनको क्या दुख है? चलो बड़े लोगों से पूछते हैं। प्रीति जी, क्या दुख है इंद्रिय जीवों को?
जीव का स्वभाव जानना है और एक इंद्रिय जीव है वो अपना स्वभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, इसीलिए वो दुखी है।
तो इससे वो दुखी है, तो उनको सबसे बड़ा दुख है मिथ्यात्व का, कि उनका स्वभाव प्रकट नहीं, तो उनको आकुलता होती है। आकुलता क्यों होती है? क्योंकि उनको समाधान नहीं है कि भाई मेरा ये कर्म की उदय से जैसा है तो है, वहां पर आकुलता होती है, तो तीव्र मिथ्यात्व का उनको उदय रहता है। मूल दोष स्वभाव के प्रकट ना होने पर मिथ्यात्व का है, तो उनको इससे बहुत बहुत उनके परिणाम तीव्र होते हैं। ओके, इसलिए वो वहीं जन्म लेते हैं, फिर वहां बहुत काल व्यतीत करते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
एक सुनेंगे, एक सवाल है पंडित जी।
हाँ बोलिए।
मे भी सवाल नहीं, लेकिन देखो यहाँ हम अमेरिका में रहते हैं ना, हमारे सबके घर के आसपास में बहुत ग्रास है और हम लोग ग्रास को काटते हैं, वरना तो जंगल बन जाता। तो ये ग्रास को काटते हैं तो वही हुआ ना, उसको वहाँ ही काटा, वहाँ हमने मतलब हमने वो जो लॉन मोवर से काटा तो वो वहाँ ही मर गया और वहाँ ही वापिस पैदा हो गया ग्रास।
नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जीव के परिणामों के हिसाब से कि वो मरण करके कहाँ पर जन्म लेगा, ऐसा कांस्टेंट नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि उनके परिणाम इतने तीव्र है कि वहां से दूसरी आयु का बंध वो कर पाए, क्या वो मनुष्य गति आयु का बंध करे, वो देवगति आयु का बंध करे, या फिर वो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव बने, ये वहां पर बहुत मुश्किल है। हम किसी जीव को कमरे के अंदर बंद करें, ओके, हमने किसी को कमरे के अंदर डांट कर बंद किया, ओके, अब कितने चांसेस हैं कि वो अच्छा फील करेगा, उसको अच्छा फील होगा, उसके चांसेस कितने आप बताइए?
बहुत नहीं, क्योंकि
कमरे के अंदर किडनैप किया हुआ है, अब वो अच्छा फील करेगा, इसके कितने चांसेस हैं?
बहुत कम,
यानी कि एकदम लाइटली उसको कुछ अंदर ही मन में उसको बंद होने में ही मजा आता है तो वो अच्छा
नहीं,
फील करेगा, नहीं हाँ, तो मेजोरिटी तो बुरा ही फील करेगा।
हाँ,
करेक्ट,
हाँ,
बुरा फील करने से कैसे कर्म बनेंगे? अच्छे कर्म बनेंगे, बुरे कर्म बनेंगे?
बुरे,
तो बुरे कर्म से अच्छी आयु मिलेगी, बुरी आयु मिलेगी, बुरी मिलेगी। इसके लिए उन जीवों के बुरे ही परिणाम होते हैं, तो बुरी ही आयु बनती है, तो उनको तिरंज गति का ही फिर बंद हो जाता है। तो उनके लिए अच्छी आयु मिल जाना, लाइक नरक गति चले, यानी कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय ये वाली आयु बंधना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि आप किसी को बांधोगे तो उसको अच्छा परिणाम होना कितना कठिन है, ऐसे इसलिए बोल रहा हूं मैं। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है, वो जो आप ग्रास काट रहे हो उसमें जो जीव है वो मरण करके शायद वाटर हो जाए, शायद वो कहीं और की ग्रास हो जाए, ऐसा है।
तो भरत जी के 99 की लड़के आए थे तो उनको कैसे मोक्ष मिल गया? वो तो निगोट से आए थे।
अरे वही, अब आप उसके लिए जिनागम को पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा। इसके लिए गुरुदेव श्री ने उसी का डंका इतने टाइम तक बजाया है कि यहाँ पर जो भी बात करेंगे ना, हम लोग अभी संसार के दुखों को समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या है, हम लोग को संसार बहुत फेवरेट है हमारा, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम से कोई पूछे कि क्या दुख है, आप बोलोगे बस धूज मजामा, सब मजे में चल रहा है, बराबर
बराबर,
हाँ के नहीं? हम यही बोलेंगे, हमको बुरा नहीं लगता है यहाँ पर। लेकिन हमने कुछ शास्त्र पढ़ लिए तो हम बोलना सीख गए कि संसार में दुख है, लेकिन हमको किसी को भी दुख लगता नहीं है यहाँ पर। इसीलिए जब दुखों का वर्णन किया जाता है तो हम एक्सट्रीम दुखों का वर्णन करते हैं, जो सबसे अधिक, जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन है ना, उनका वर्णन होगा। मूल मुद्दे की बात तो यही है कि ये सब स्वभाव की होनहार पर है। किसी जीव की होनहार तो ऐसी है कि वो निगोद से सीधे मनुष्य गति में आता है, यहाँ से अन्य किसी गति में नहीं जाता, वो ना कभी देव हुआ ना कभी नारकी हुआ, वो यहाँ पर मुनि दीक्षा धारण करता है और मोक्ष चला जाता है। और कोई जीव ऐसा है जो यहाँ पर जन्म लेता है, दीक्षा धारण करता है 11वें गुणस्थान तक, कितने गुणस्थान तक? 11वें गुणस्थान तक वो उपशम श्रेणी पर चढ़ता है, फिर गिर के वापस बादर निगोद में जन्म लेता है और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल इस संसार में रहता है। बताओ, एक तो वो जीव है जो निगोद से अब भी निकला और सीधे मोक्ष हो गया, और एक वो जीव है जिसने आत्मज्ञान भी किया, वो 11वें गुणस्थान तक गया, मतलब 11वें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागी हो गया, बस उसकी कर्म दबे हुए हैं, नाश नहीं हुए, पूर्ण वीतरागी भी हो गया, फिर भी वो अब कहाँ गया? वापस निगोद में चला गया। बताओ अब ऐसा कैसे हुआ? तो ये सब तो जीव की होनहार है, ये तो मूल है, स्वभाव की होनहार है। जिसको मोक्ष होना होता है वो निगोद से निकल कर तुरंत हो जाता है, जिसको जितने काल संसार में रहना है वो उसकी होनहार पर है। ये हमारे पारिणामिक भाव की स्वतंत्रता है। अब अभव्यत्व जीव है, अभव्य जीव है, वो कभी मोक्ष जाएगा क्या?
नहीं जाएगा।
अब क्यों नहीं जाएगा? वो निगोदिया जीव निकल के मोक्ष हो सकता है, जो कितने टाइम पहले निगोद से निकल गया वो मोक्ष नहीं जा रहा, क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि
स्वभाव में तर्क नहीं होते, ये उसका नेचर है। वाटर का नेचर ठंडा होना है तो वो ठंडा रहेगा, अब अभी का नेचर मोक्ष नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगा। ओके, आपको समझा? तो ये स्वभावगत बातें हैं, लेकिन हम स्वभाव की बातों को समझकर उपदेश को ग्रहण करेंगे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, हम यही मान के बैठ जाएंगे चलो भैया जैसा होगा मेरा स्वभाव वैसे होगा, तो हमारा मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होगा। हम तो यही मान के बैठ गए कि जैसा है वैसा होगा, वो 99 पुत्र निकले और चले गए, वो 99 नहीं थे, 32,000 थे बाय द वे, उनके 32,000 पुत्र।
कितने थे?
32,000।
32,000
में से कुछ पुत्र थे, उनके टोटल 32,000 थे, उसमें से कुछ थाउजेंड्स में पुत्र आए थे। एग्जैक्टली जब हमने लास्ट टाइम गुरुदेव श्री का स्वाध्याय सुना था तब गुरुदेव श्री ने बोला था भरत चक्रवर्ती 32,000 पुत्र सीधे निगोद से निकलकर उनके पुत्र हुए, उन्होंने संख्या नहीं बताई थी, 32,000 पूरी नहीं है पर एग्जैक्टली कितनी है, 99 तो मेरे हिसाब से शायद नहीं है, मैं एग्जैक्टली कंफर्म करके आपको बताता हूँ।
ओके,
तो ये तो हमें स्वभाव को भी समझना है कि स्वभाव की स्थिति तो ये है कि भाई परिणामों की विचित्रता तो ये है कि कोई अनादि का निगोद में बसा हुआ जीव, उसके परिणाम इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वह सीधा मनुष्य धर्म धारण करके, मनुष्य गति धारण करके मोक्ष चला जाता है। और कोई जीव तो ऐसा है जो छठे सातवें गुण स्थान में बनने वाले मुनिराज हैं, ग्यारहवें गुण स्थान तक गए, वहां पर पूर्ण वीतरागी हुए और फिर नीचे गिरकर वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक इस संसार में रहे। तो वहां अर्ध पुद्गल परावर्तन में रहे उसका मतलब ये कि वे निगोद में भी गए, एक इंद्रिय दशा में भी गए, वे पृथ्वी जल ये सब बने, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है और त्रस्त पर्याय में तो अकेली 2000 वर्ष तक हम रह सकते हैं, तो बाकी काल तो हमें एक इंद्रिय पर्याय स्थावर पर्याय में ही बताया, उन्होंने नहीं बताया, इसलिए उनको भी वो कौन से मुनिराज हैं जो पूर्ण वीतरागी एक बार हो चुके हैं, वो हैं उपशम श्रेणी के चढ़ने वाले मुनिराज हैं, और वो वाले मुनिराज भी एक इंद्रिय पर्याय में आए। ये किसका क्या, ये क्या है, ये अपने स्वभावगत योग्यता है कि मेरे जिस तरीके से परिणाम होंगे उस तरीके से कर्मबंध है और जो कर्मबंध है उसके अनुरूप गतियां मिलती हैं। ओके, क्लियर हुआ?
हाँ बहुत अच्छा, सॉरी सब समय ले लिया, थैंक यू।
हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओके। तो एक इंद्रिय जीव, इनको इनके लिए कोई अवसर नहीं है कि इनको कोई टीचर आकर समझाए, हमारे सदगुरु आके समझाए कि भैया तुम जीव हो, तुम अपने आप को जानो, तुम आकुलता क्यों करते हो, क्योंकि उनके पास कुछ इतना ज्ञान प्रकट है नहीं कि कोई उनको समझाए और वो समझ जाए, इसलिए वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं अपने परिणामों पर कि कभी उनका भाग्य हो, पुण्य कर्म का उदय है तो उनके अच्छे परिणाम हो, बुरे परिणाम रहेंगे तो उनको कोई समझाने वाला नहीं, तो वो हमेशा बुरे कर्मों को ही बांधेंगे, और उनके अच्छे परिणाम रहे तो कभी अच्छे कर्मों को बांधकर वो वहां से निकलेंगे। तो अब उनके लिए कौन है वहां पर रिजुल, वहां पर उनको समझाने के लिए कौन आएगा? आप अपने गार्डन में लगे प्लांट्स को समझा सकते हो कि भैया गंदे बुरे भाव मत करो?
नहीं।
बोलो, समझा सकते हो? नहीं समझा सकते। तो अब इमेजिन करते हैं कि हम वहां प्लांट बन गए, मैं अपने गार्डन में प्लांट बन गया, अब मुझे बहुत कोई आकर कटिंग कर रहा है, ओके, मुझे को काट रहा है कोई, अब मुझे वहां मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तो अब मुझे समझाने वाला कौन है वहां पर कि दुखी मत हो, तुम्हारे शरीर को काट रहे हैं, आत्मा को नहीं काट रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव इससे कुछ नहीं हो रहा है, तुम तो अनंत गुण के पिंड हो, ऐसा मुझे बोलने कौन आ रहा है अभी, बताओ मानस, मुझे कौन समझाने आएगा ये वाली बातें जब मैं एक प्लांट हूं बाहर? बोलो मानस, हेलो रिजुल,
कोई भी नहीं,
कोई भी नहीं आएगा, ओके। तो फिर अब मैं तो वहां पर पड़ा, मुझे तो दुख हो रहा है, करेक्ट, मुझे कोई समझाने आ नहीं रहा है, मैं खुद कुछ को मुझको कुछ आता नहीं है, तो मुझे कुछ समझता नहीं है, तो अब मैं वहां पर दुखी हूं, इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन है, मेरे पास कोई और ऑप्शन है अभी वहां दुखी होने के सिवाय? हेलो,
नहीं,
मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसको बोलते हैं कर्म फल चेतना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि जिनको कर्म के उदय को भोगना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब मुझे जब वहां कोई समझा नहीं रहा है इसलिए मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो अभी भी मैं दुखी हूँ और परिणाम मेरे गंदे हैं, तो मुझे कर्म भी गंदे बन रहे हैं, तो वापस मुझे अगला भव भी बुरा मिलेगा, तो इसके लिए मेरा अभी का भव भी बिगड़ा गंदे परिणामों से और मेरा अगला भव भी बिगड़ा, तो अब मैं कैसे कैसे, ये एक सीरीज चल गई, अभी के भव में पाप का उदय, फिर अगले भव में पाप का उदय, अब अगले भव में मैं वापस पिरियंच हुआ, वापस यही स्थिति है, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, फिर मेरा पाप का उदय, फिर ये स्थिति हुई कि मुझे कोई समझाने वाला नहीं, तो मैं नए भव में हुआ, फिर पाप का उदय, तो मैं एक के बाद एक गंदे गंदे भव धारण करते जा रहा हूँ और मैं अपने भवों को भी नहीं सुधार सकता। इसको बोलते हैं पराधीन स्थिति और ये होती है कर्म फल चेतना। तीन प्रकार की चेतना हमने पढ़ी थी, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, करेक्ट, हमने पढ़ी थी तीन प्रकार की चेतनाएं।
हाँ जी,
हाँ तो कर्म फल क्षेत्र से बोलते हैं नीरज जी। जी
जिसका कि जो कि बाउंड है और जिसका जो कि एक इंद्रिय जीव को ही होता है और उसमें कर्म
हाँ,
का
जो
फल
कि
है और
कर्म के उदय को भोगने के लिए बाउंड है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके पास ना तो तत्व ज्ञान है जिससे वो अपना समाधान करे, ना उसके पास आचार्य हैं, ना जिनवाणी है समझने के लिए, ना सीडी प्रवचन है, ना उसके पास आईपॉड है कि वो वहां पर भजन सुन ले, स्वाध्याय सुन ले। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को समझाने का। तो वहां पर उदय आएगा और वो उसके हिसाब से दुखी होएगा, उदय आएगा और वो दुखी होगा। तो वो कर्म के उदय को भोगने के लिए, मतलब वो पनिशमेंट लेने के लिए बाउंड है, वो वहां से भाग नहीं सकता है। उससे बोला है कि यहाँ पर खड़े रहो धूप पर, तो वो धूप पर खड़ा है, वो वहां से छाया पर नहीं जा सकता है। ओके, कर्म चेतना क्या होती है? कर्म चेतना क्या होती है? चलिए, इस पर अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है। तो अभी हम आज श्री का सिद्धि प्रवचन स्टार्ट करते हैं, और 10 मिनट का ही करते हैं क्योंकि हमको सिर्फ अभी ये वाला स्टार्ट करना है। हमने हाफ एन आवर तक का कर लिया है वाला, सचिन जी, राइट? सेकंड वाला प्रवचन। हेलो सचिन जी।
हाँ अनुभव जी,
हाँ, सेकेंड वाला जो प्रवचन है हमने हाफ एन आवर 30 मिनट्स का अभी तक किया है, राइट?
मुझे ख्याल नहीं एक्चुअली कहाँ तक किया
हाँ, 30 मिनट्स तक किया है। और हमने 30 मिनट्स तक, वो फोर्थ श्लोक होता है और उसके बाद फिफ्थ स्टार्ट होता है। तो आप 30 मिनट्स पर से स्टार्ट कर दीजिए। आज 10 मिनट्स ही करते, हमारा टाइम, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। हम सिर्फ आज फिफ्थ श्लोक का मीनिंग समझेंगे, वो गुरुदेव श्री ने स्टार्टिंग में समझाया है। उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे आज के लिए, और अगली क्लास में हम फिर यहाँ तक सब याद करके आएंगे। क्योंकि अभी जो फिफ्थ श्लोक है इसमें बहुत आश्चर्य वाली बात बोलेंगे, तो वो क्या है हम गुरुदेव श्री से जानते हैं। ओके सचिन जी, रेडी है क्या वो स्वाध्याय?
1 मिनट मैं चेक कर रहा हूँ जी, लेकिन
हाँ,
हाँ ये 30 मिनट्स
देखिए,
आई देख
गुरुदेव श्री जो बोलते हैं हम उसको क्यों सुनते हैं? हमको कुछ
पॉज
समझ
कर
में
दिया
नहीं
पहले,
आता है
मैं
ना, फिर भी हमको उनको सुनना चाहिए। क्यों?
30 मिनट्स में करता हूँ।
क्योंकि हमारे जो ज्ञानी गुरु हैं, आप उनकी नहीं समझने वाली
देख
बात
है
सुनोगे तो
पृथ्वी
क्या
नो जीव
पता
थयो,
करेगी?
ये वो जीव विषय है, खाने में माटी आवे ना,
जिसको जिसको
तोद
समझ में
माती
आए अपना
पृथ्वी पानी
पृथ्वी
अग्नि
का अर्थ
वायो
लिखने की
वनस्पति
कोशिश
प्रत्येक
करेगा,
एम आती
आपको
त्रस्त।
समझ सकता।
अनुभव जी स्टार्ट करो।
हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, सब लिखने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। ओके
इसकी बात करी साइन समझाई
बराबर।
छे काई भैया, त्रियंक ની વાત બધી હાલે છે, નિગોહ ની બધી ત્રિયંક છે ને, નિગોહ છે પૃથ્વી પાણી અગ્નિ બધા ત્રિયંક છે। હવે એમાંથી કઈ ત્રસ નું પામું ચિંતામણી રતન સમાન છે, હજી ત્રસ હો બેન્દ્રી ત્રણેન્દ્રી ચૌરેન્દ્રી તમ સમજાનું કઈ ત્રસ ત્રસ નો પર્યાય એટલે શરીર દુર્લભ મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થાય છે એ એકંદરી માંથી નીકળી નિગોદ માંથી નીકળીને પ્રત્યેકમાં આવ્યો પૃથ્વી આદિ એમાંથી નીકળીને ત્રસ થવું ચિંતામણી રતનની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે એમ ત્રસ પણ પામવું દુર્લભ બેન્દ્રી હીર થવું દુર્લભ છે એમ કે છે જો આચાર પોતે કે છે સ્વામી કારતક એનો દાખલો આપ્યો છે મને રાજી ગયા ને હા હા પહેલાના ગ્રસ્તો પંડિતો ઘણી વાત કરતા નહોતા, બધી આચાર્યો એ કહેલી છે એને ટૂંકમાં સંકેલીને જે કઈ કહેવાનું હશે હોય એ વાત કરતા, ઘરની કે વાત કરતા ની મહા બહુ ભીરુ હતા, સમજાણું કાય એ ત્રસનો મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાં પણ એ હજી તો કે છે કે એકંદરી વનસ્પતિ પૃથ્વી પાણી માંથી નીકળીને ઈર પામવું એ ચિંતામણી રતન પામવા જેવું છે, ચિંતામણી રતન જે મુશ્કેલ એકંદરી માંથી એ થવું એ મુશ્કેલ એ બે ઇન્દ્રી આ થાણામાં થાય છે ને એક શરીર બે સમજે છે એકંદરી એક શરીર સરસ જ હોય અને શરીર એકંદરી ને મોટું બે હોય એ કીડી જો ક્રમ લીધો છો કીડી એટલે ત્રણ ઇન્દ્રી એમ ક્રમ લીધો છે કીડી ને ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય છે ફરસ નાક જીવનાક એ પણ મહા એકેન્દ્રી માંથી બેન્દ્રી ને બેન્દ્રી માંથી ત્રણ ઇન્દ્રી ચિંતામણી રતન ની દુર્લભતા એ પામે છે અહીંયા કઈ હીરો થોડોક મળે ત્યાં આમાં થઈ જશે નથી એ તો કે ચિંતામણી રતન ની પેટે આ ઈર પામવું મુશ્કેલ એમ કે તારા હીરાની વાત નથી આવી સમજાણું કાંઈ ત્યાંથી નીકળીને ભમરો એ ચૌરંદ્રી છે એક એક ઇન્દ્રી ચડી જાય ભમરા ને ચાર ઇન્દ્રી હોય છે કાન હોતા નથી એને આંખ હોય છે ખરાબ નાક આદિ વગેરેના શરીરો એનાથી એક એક નમૂનાનું નામ આપ્યું એવા બે ઇન્દ્રિયના જીવો ત્રણ ઇન્દ્રિયના જીવો ચૌર ઇન્દ્રિયના જીવો એ એક ઇન્દ્રિય માંથી થવું મહા ચિંતામણી રતન ની પાસે માંગવું છે સમજાણું કાંઈ ધર ધર વારંવાર ધારણ કરીને જવું પછી એકલા નહીં એમાં ઘણો કાળ રહે છે એની કાંઈ સ્થિતિ મોટી છે ત્રસમા એક ત્રસમાની સ્થિતિ 2000 સાગર 2000 સાગરો પણ ત્રસમા રહે ત્રસ એટલે બધું થઈ નું 2000 સાગરો પણ કેટલા વર્ષ થાય એમાં અસંખ્યાત અબજ વર્ષ 2000 સાગરો પણ એક સાગરમાં એક 10 કરોડ કરોડ પલ્લો એક પલ્લો પણ અસંખ્યાત અબજ વર્ષ એવા એવા 2000 સાગરો પણ ત્રસમાં રહે બે ઇન્દ્રી ત્રણ ઇન્દ્રી ચૌર ઇન્દ્રી અહીં પસંદ એ બધું થઈ નું વારંવાર શરીર ધારણ કરીને મળ્યો સંયોગ થી વાત સમજાય છે આમ તો નિરોધ માંથી નીકળીને આવે છે ને શાસ્ત્ર માં 32000 ભરત ના પુત્રો લખ્યું છે એમાં એકદમ મનુષ્ય એ તો કોઈ થાય છે એ તો ક્યાંય સીધા મનુષ્ય થાય સીધા કોઈ સમજાય છે મન વાળા થાય કોઈ મન વિના ના પતિન્દ્રી થાય સીધા થાય એમાં કઈ એ તો એ કઈ સમજાવવાની શૈલી શાસ્ત્ર હોય એમ મૂકે ને વાત હે 10000 પૂરા 32000 સમજાણો નીકળીને નીકળ્યા પણ એ તો ઉત્કૃષ્ટ વાત બતાવી હોય એમાં ઉત્કૃષ્ટ વાત બતાવી હોય એમાં ઉત્કૃષ્ટ આવી વાત ન કરે સમજાણું કઈ ઉત્કર્ષ જે વાતના દુઃખ ની શૈલી ને કેમ બતાવો એમાં ઉત્કર્ષ વાત કરે એમ હોય ને એ બતાવું હોય ને ઓલી વાત શું કરે બતાવે કે છે કે ધર ધર મર્યો શરીર ધરી ધરીને મર્યો એક શરીર ધારણ કરીને બીજું બીજું ત્યાં ત્રીજું ત્રીજું હા વસ્ત્ર પલટા માં પડે ત્યાં આંકડા પડે આ કે શરીર ધરી ધરીને મર્યો અનંત ભગવાન આત્મા આનંદ નો ઘન પ્રભુ પોતાને ભૂલી અને પર્યાય માં મિથ્યાત ને રાગ દ્વેષ ને સેવી આવા શરીર ને ધારણ કર્યા કોણ ક્યાં માન ને ક્યાં અપમાન એને માનતું નહોતું કે જીવ છે એકંદરી નિગોડ ના જીવ ને કોણ માને એને ક્યાં ખબર છે કે મેં જીવ છે કે નહીં આ ત્રસ થયો ત્યારે જરી વળી આમ ગતિ કરવા માંડ્યો આમ વીરી ને ગતિ શરીર ને પણ વીરી માંગે કર્મ ચેતના કર્મ ચેતના એકંદરી માં એટલી મુખ્યપણે કર્મ ફળ ચેતના જ છે પાપ ના ફળ જ એકલા ભોગવે છે એકલા દુઃખ ને ભોગવે છે ત્રસ્તો એમાં મુખ્યપણે કર્મ ચેતના ગણવામાં અને બાકી ફળ તો ભોગવે ભૂગાઈ ભોગવાની વાત લીધી અને તો કર્મ ફળ ચેતના ભોગવાની દુઃખ ની વ્યાખ્યા લીધી સાંઈ તો મર્યો મરણ પામ્યો કોણ મરણ પામ્યો કે જી મરણ પામતો નથી શરીર ધારણ ધારણ કરીને મેળ્યો એમ કીધું ને શરીર નો સંયોગ થયો એ શરીર છૂટ્યું શરીર થયો એ છૂટ્યું એમ ન મેળ્યો એમ અને બહુ પીર સહી ઘણી પીડા સહન કરી ઘણી પીડા એનું પીડી મોકરા આવડી લાંબી એ હોય એના ઉપર એક મોટો ઘણ પડે પચામણ નો પડ્યો હોય એ અડધી દબાણી અડધી આગી રહી ગયો હોય હે મણ મણ બે મણ પાંચ લોટ હોય કે નહીં એ લોટ થતી લાંબી લાંબી એમાં કોઈ પડ્યો મોટો પાંચ મણ પથરો એનો પાછો અડધીમાં અડધી આ અડધી અંદર સંયોગ થી વાત ચાલે છે એને પીડા છે એકંદર વિકાર ની એક જ પોતાનો હા 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 હવે આ કરી નું એથી નીકળે નહીં અહીંથી મરાય નહીં ચળવળી 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 ચળવી મરાય હા બેન રીતનંદની ચળવળી વાત છો માખ્યો છું ના મધમાખ્યું માથે એવી ભેગી કરી હોય એટલે વાઘરી નહીં કરે તમારો અગ્નિ અગ્નિ મોટી હળ 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 અગ્નિ કરે હાથ વાગી જાય મધલી વાતો કરે એવા દુઃખો પીડા ઘણી પીડા સહન કરી દે જોના ગોળના ઓલામાં વાઢમાં અત્યારે ગોળ વાઢમાં એવી માછું પડે ફટ મજ્યા હે કીડિયું એવી કીડિયું નીકળી હોય નહીં ધગધગતા ઓલામાં કીડિયુંમાં ઓલા અગ્નિ ઓલામાં ધગધગતા કરાયા હોય ને કરાયા હેઠે નીકળે એને એટલા બધા ફેરવા કોણ ને કીડું જોવા જાય ને હા હર હર સસરૈયા ઉદય ઉદય એવી ઉદય હોય છે સ્મોળી બહાર નીકળે સરકો આકરો લાગે સડસડ થઈ જાય ધાણી ની પછી સડસડ થઈ જાય એવા બહુ પીર સહી એ ટૂંકા શબ્દમાં ઘણી પીડા સહી બાપુ તેને બેન્દ્રી ત્રણંદ્રી ચૌંદ્રી માં ક્યાંય સુખ ની ગંધ નથી જેવી રીતે ચિંતામણી રતન બહુ મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થાય છે તેવી રીતે આ તો મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થાય એટલી દુર્લભતા બતાવી છે હા દુર્લભ છે ને દુર્લભોધી છે આ જીવે ત્રસ પર્યાય પણ ઘણી મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત કર્યો છે નિરોધથી નીકળી પ્રત્યેકને એમાંથી નીકળીને ત્રસ ઘણા મહા પુન ક્રિયા સારે બહાર આવ્યો આ ત્રસ પર્યાયમાં પણ ઈળ વગેરે બે ઇન્દ્રીજી કીડી વગેરે ત્રણેન્દ્રીજી ભમરો વગેરે ચારેન્દ્રી જીવના શરીર ધારણ કરી મળ્યો અને ઘણા દુઃખો સહન કર્યા કોને પોકાર કરવા જાય ફરિયાદ હાલે ન્યા કોઈને તમને મફતના મારી નાખે છે અમે અમથા ફરીએ છીએ કીડી મકોડા પાણીમાં પડે અગ્નિમાં જાય કોફ લે છે કીડી પાંખું આવે કીડી ને ભરે પાણીમાં ફાટ દે અને પડતા પડતા મોટી પાંખું લાંબી હોય થી પડવું ક્યાંય એને ખબર ન હોય પછી પડતા પડતા અમે આમ ફરતા ફરતા અગ્નિ હોય ત્યાંય પડી જાય કાર પાંખોનો ભાર થઈ જાય ને પાંખોનો અને થતા ચાર આઠમાં શું કહેવાય જીવડા ચોમાહામાં કાગડા હે અહીંયા એ ચલ હા એ કાંઈ નીકળતા હતા ખૂણામાં એ ફીડ તમે હતા કે નહીં હા એ તમે હતા બોલે ખૂણે ખબર છે ને ઘણા વર્ષ પહેલાં એ કાંઈ નીકળતા હું અંદર નવા નવા મહિનો ફટફટ બોલે ખૂણે આ ખૂણે બહારથી કાગડાને પારેવા તૈયાર હોય પટ મારે કે બોલું વચનું કલેવર ખાઈ જાય ને ઓલા પાંદડા ફૂટતા પડી જાય પણ એને ને એ કે છે કે અનંતની વાત તારે ત્યાં છે એમ કે છે સમજાણું કઈ બેન્દ્રીમાં ત્રણેન્દ્રીમાં ચૌરંદ્રી ભમરા માછું પતંગિયા કચરા જો ને રસ્તામાં મોટા મોટા આવડા હોય પતંગિયા મોટા આવડા હા બસ ચાલે બસ રસ્તામાં ચેપાઈ રહી છે ઘણી વાર આવડા આવડા મોટા હોય પીવા ચેપાઈ ગયેલા હવે ત્રિન ગતિમાં અસંગની ને સંગની નો કર્મ લીધો પાછો ત્રિન ગતિમાં પણ મન વિનાના પતંદ્રી થાય છે અને મન વાળા થાય છે એવા પણ તે બહુ અનંતા કહ્યા એ શાસ્ત્રમાં આમાં લીધું છે સ્વામી ખાતર એ કર્મ લીધો છે એ જ કે છે કે તું તારા કાળ હવે મળ્યો માહિતી અવસર ચીતી લે એ હાથુતા વાત કરે છે મોંઘો બાપુ માણસ પણ મોંઘા એમાં ધર્મ પામવું સાંભળવું મોંઘું જેવું આ બહારની પદવી હતું ધમા ધમાલતી છે કે નહીં ત્યારે હે બોલો હું પદવી મળ્યું હું પદવી અરે અરે પણ ક્યાં બાપા તારી પદવી ભાઈ શું શું મળ્યું છે ને શું જોવું છે એ રહી જાય સાથે આ માન માન ભૂમ મેં
ओके पहले हम सब पांचवी गाथा पढ़ेंगे ओके मैं एक बार बोलता हूँ फिर हम सब साथ में गाएंगे इसकी हेडिंग है त्रयंशगति में त्रस पर्याय की दुर्लभता और उसका दुख। अभी एकेंद्रीय जीवों की बात करी, वो स्थावर जीव हो गए। अब बाकी के जो जीव बचे स्थावर जीव के अलावा संसारी जीवों में, वो बचते हैं त्रस जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय संगी जीव और असंगी पंच इंद्रिय जीव। उसकी यहाँ पर बात आएगी। अब चलिए, दुर्लभ लही ज्यो चिंता मणि, त्यों पर आय लही त्रस तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। ओके, सब साथ में गाते हैं। दुर्लभ लही ज्यो चिंता मणि,
तयो पर्याय लही त्रस तनी, लट पिपील अलियादि शरीर,
धर
धर मर्यो सही बहु पीर।
एक और बार साथ में गाते हैं। दुर्लभ लही ज्यो चिंता मणि, त्यों पर आय लही त्रस तणी,
लट पिपील अलियादि शरीर, धरि धरि मर्यो सही बहु पीर।
अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आश्चर्य वाली बात कह रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप देखते हो बटरफ्लाईज होती हैं और जो रेनी सीजन में वो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं रात को ट्यूबलाइट के आसपास या कहीं पर पार्क में गार्डन में, कभी देखें कभी आपने नहीं देखे वो छोटी छोटी फ्लाईज होती हैं। हेलो,
हाँ जी,
देखे आप लोगों ने? नहीं। ओके, दिया आपने भी देखे हैं?
यस।
ओके, तो वो लोग तो बहुत लकी है ना, वो लोग बड़े पुण्य की वजह से उस गति में जाते हैं ना। वो फ्लाई बनी, वो एंट, वो चीटी बनी जो है छोटी सी, और जो हनी देती है, हनी कौन देता है? हनी कौन देता है? बीज, राइट, बीज देती है। अच्छा, सिल्क, सिल्क जानते हो आप? सिल्क क्या होता है? सिल्क वो क्या होता है? वो भी एक जीव होता है, सिल्क भी एक जीव होता है, उसकी साड़ीज बनती है, उसके कपड़े बनते हैं सिल्क के। ओके, तो ये सब जो है ये सब बहुत पुण्य की वजह से मिलती है ना यहाँ पर जन्म, करेक्ट? जब आप बहुत लकी हो तब आपको ये वाली बॉडी मिलती है ना, करेक्ट मानस? हाँ
जी,
हाँ कि नहीं? क्या बात कर रहे हो आप? आपको बी बनना क्या बहुत पुण्य का उदय लगता है? हेलो सिमोन जी, आपको क्या लगता है ये बड़े पुण्य के उदय की बात है? वो कहीं पर हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, हमारे घर पर भी कई बार वो गंदगी कहीं हो जाती है तो वहां पर इंसेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो बहुत पुण्य के उदय की बात है ना?
निगोद से निकल के तो पुण्य से मिलता है ना, एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव से पंच इंद्रिय बेटर है, पर निगोद से तो एक इंद्रिय बेटर है ना?
ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, ये वाली गतियां जो है इनमें जन्म लेना ये पुण्य के उदय की बात नहीं है, लेकिन निगोद से निकलना ये पुण्य की बात है। दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, एक चिंतामणि नाम का एक रत्न होता है। ओके, एक डायमंड टाइप का समझ लीजिए, एक रत्न होता है, इसको आप यदि आपके पास है फिर आप मन में जो कुछ भी सोचोगे, कुछ भी, लाइक मुझे अभी क्या चाहिए, तो मुझे एग्जाम की मार्कशीट चाहिए, बिना एग्जाम दिए तो मेरे पास एग्जाम की मार्कशीट आ जाएगी। मैं जो सोचूंगा, मुझे जो चाहिए, मुझे जहां पर जिस जगह पर घर चाहिए मुझे, जहाँ पर जो कार चाहिए, जो खाने को चाहिए, जो आप सोचोगे ना वो आपको मिल जाएगा। चिंता, जिसने जो भी सोचा, चिंता करना यानी कि सोचना, तो आप जो भी सोचोगे वो आपको मिल जाता है, ऐसा चिंतामणि रत्न होता है। ओके, वॉट एवर वी विश, जो हमने बस मन में सोचा वो सामने आ जाता है, यदि हमारे पास चिंतामणि रत्न हो तो। ओके, तो चिंतामणि रत्न कहाँ मिलता है फिर रिजल, कहाँ पर मिलता है ये? ऐसा कहीं सुना आपने कि किसी के पास ऐसा कोई पत्थर है कि वो जो सोचता है उसको वो मिल जाता है उससे?
नहीं
नहीं सुना। करेक्ट, उसका मिलना कितना मुश्किल है, आपको पता है कहाँ मिलेगा ये?
नहीं,
नहीं पता है, क्योंकि संसार में किसी को पता ही नहीं कि वाला रत्न कहाँ मिलेगा, तो अब इसको पाना कितना मुश्किल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं पता कैसे मिलेगा। तो दुर्लभ यानी कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, दुर्लभ बहुत मुश्किल है, लही मतलब प्राप्त होना, मिलना बहुत मुश्किल है, मिलना किसका? ज्यो चिंतामणि, ज्यो यानी कि जिस प्रकार, जैसे जैसे चिंतामणि रत्न का मतलब ऐसा रत्न, ऐसा डायमंड जिसके मैं जो सोचूं वो मिल जाए, जिस प्रकार ऐसे रत्न का मिलना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार ज्यो त्यों, ज्यो मीन्स जिस प्रकार, जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना बहुत दुर्लभ है, और जिसको मिलता है वो एक्सट्रीमली लकी होता है, बहुत पुण्य के उदय वाला होता है, उसी प्रकार त्यों पर्याय लही त्रस्तनी, स्थावर एक इंद्रिय पर्याय को छोड़कर दो इंद्रिय, वो जो हमारा एकदम जो गंदगी होती है, हमारे वॉशरूम होते हैं, गटर्स होते हैं, वहां पर जो जन्म लेते हैं ना जी, वो छोटे छोटे, वहां पर जन्म लेना उतना एक्सट्रीमली लकी है, कितना? जितना किसी को चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए उतना। निगोद से निकलना कितना लकी है, जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना अत्यंत इम्पॉसिबल टाइप्स है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, उसी प्रकार स्थावर तन को छोड़कर त्रस बनना, उसकी त्रस पर्याय, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी, त्रस जीवों की त्रस्तनी, त्रस्तनी यानी कि त्रस जीवों की पर्याय मतलब वहां पर जन्म लेना, वो उतना ही मुश्किल है, कितना मुश्किल? जितना कि चिंतामणि रत्न की प्राप्ति मुश्किल है। ओके, समझा इतना? हेलो हेलो,
हाँ अनुभव जी,
आप सब हैं? हाँ हाँ, इतना इधर तक समझा सबको? दुर्लभ
अनुभव जी, अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, दैट एज डिफिकल्ट एज इट इज टू गेट अ चिंतामणि जूल, दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ थ्रस्ट जीव?
या वो या दे आर एक्सप्लेनिंग इट बाय यू नो शोइंग द इम्पॉसिबिलिटी कि लाइक इन टुडेज वर्ल्ड हाउ टफ इट इज टू हैव चिंतामणि रत्न, इट इज वेरी टफ, जस्ट लाइक दैट फॉर अ एकिंद्रिय जीव, स्थावर जीव, फॉर दैट जीव टू टेक बर्थ इन द यू नो इन दो इंद्रिय शरीर, तीन इंद्रिय शरीर, चार इंद्रिय शरीर, इट इज सेम, इट exactly same as somebody, as the possibility of somebody is getting a chintamani ratna. Like chintamani, nobody in today's world we see having a chintamani ratna. The same way a tras jeev, a ekindriya jeev, his possibility of taking birth in tras pariyah is that extreme. Means when infinite jeev die in triyansh gati in ekindriya jeev, like फॉर इन्फाइनाइट जीव, अनंत जीव है एक इंद्रिय जीव, ओके, उनका एक
उदाहरण
होगा, उसमें से वन और टू जीवा विल टेक रीबर्थ एज दो इंद्रिय तीन इंद्रिय, मोस्ट ऑफ देम विल अगेन बिकम एक इंद्रिय। गुरुदेव श्री को ऐसा समझाते थे जैसे कि क्या होता है, जो स्नेक होता है ना, स्नेक वो एक साथ 108 बच्चों का जन्म देता है, ओके, 108 बच्चों को जन्म देता है, वो उसके अंडे होते हैं, एक्स इट्स स्नेक जो है वो 108 ऐसे मेजोरिटी क्वांटिटी, तो वो क्या करता है, इट एनसर्कल्स ऑल ऑफ द एग्स, इट मेक्स इट सराउंड्स ऑल ऑफ द एग्स, ओके, आप लोग मानस विजुअल ये सुनना ध्यान से, ओके, इट सराउंड्स ऑल ऑफ इट्स एग्स, इट्स ओन चिल्ड्रन, ओके, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इट फील्स हंग्री, इट स्टार्ट्स ईटिंग इट्स ओन एग्स, ओके, नाउ majority time all the 108 eggs it eats in most of the times, in most of the cases. So how do we see new snakes during that process? If by luck any one of the egg it gets blown up by the air, kuch kisi karan se wo us circle ke bahar aa jata hai, kisi karan se, kabhi uska kisi ka dhakka lag gaya, kabhi hawa tez chali उससे उड़कर आ गया, या फिर कभी उसके सर्कल बनाने में ही छूट गया, इफ बाय एनी चांस इफ अ एग कम्स आउट ऑफ दैट सर्कल देन ओनली इट्स द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल, अदरवाइज दैट स्नेक लेज इट्स एग एंड सर्कल्स देम, सराउंड्स देम एंड देन इट ईट्स इट्स अवे, वो उसी को सारे खा लेता है. सो नाउ टेल मी दैट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट एग आउट ऑफ दैट सर्कल वो कितनी रेयर है, वो इसने खुद नहीं निकाल रहा उसको बाहर सर्कल के, वो कुछ हो कभी छूट जाए या फिर कोई तेज हवा चले तो बिखर कर आ जाए, देन ओनली इट विल सर्वाइव, अदरवाइज इट हैज टू डाई. सो नाउ कैन यू अंडरस्टैंड, लाइक अब समझ में आ रहा हो कितना एक्सट्रीम पोजीशन है उस एक एग के अंदर जो स्नेक है उसको कितना एक्सट्रीम लक के साथ जन्म लेना पड़ेगा कि वो जन्म ले, उसको स्नेक सराउंड करे, फिर अच्छी तेज हवा चले उसी टाइम पर और वो उड़कर जाए, या फिर कोई आए वो स्नेक को भगाए तब वो अंडे वहीं पर छूट जाए. ये तो लक की बात है ना, स्नेक विल नॉट लेट हिम गो ऑन इट्स ओन. जब ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी, कोई सिचुएशन बनेगी, देन ओनली इट विल गो, राइट?
तो ये आत्मा के साथ भी लक डिपेंड होता है या हमारे ज्ञान पे, जो वो आत्मा एक इंद्रिय आत्मा पे डिपेंड होता है, और या लक पे डिपेंड होता है?
लक तो जीव का ही होता है ना, जीव का नहीं होता है. लाइक वी हैव सो मेनी थिंग्स इन आवर होम, दे डोंट हैव लक. लक इज व्हाट विद अस. लक का दूसरा नाम है पुण्य कर्म का उदय, तो वो हमारे से होता है. तो मैंने कभी शुभ परिणाम किए तो शुभ कर्म का बंध हुआ, वो उदय में आया, उसी को मैं लक बोलता हूँ, उसी को पुण्य का उदय बोलता हूँ. तो वो एक जीव जब बहुत पुण्य के उदय से कभी उसकी मंद कषाय होती है, तब उसको दो इंद्रिय तीन इंद्रिय गति का बंध होता है. तो वो पुण्य का उदय है कि वो वहां से निकल कर आ गया, उसको एक चांस मिला कि वो निकल कर आ गया वहां से. पता नहीं उसके, हमने उस बंदे को बंद करके एक कमरे के अंदर बंद किया था, पता नहीं वो हंसने कैसे लगा, उसको अच्छा कैसे फील होने लगा, वो तो वहां पर सैड ही होना चाहिए था, बट किसी एक्सट्रीम कोइंसिडेंस के साथ उसने स्माइल करी, वो थोड़ा खुश हुआ, उसको अच्छे कर्मों का बंधन हुआ और वो वहां से निकल कर बाहर आ गया.
पर एक इंद्रिय जीव की शक्ति होती है, सुख दुख को होने की शक्ति होती है एक इंद्रिय जीव में?
हाँ हाँ, सुख दुख जीव की डेफिनेशन ही बोली है, डेफिनेशन वो होती है जो सब पर अप्लाई हो. तो जो डेफिनेशन रहेगी वो एक इंद्रिय पर भी अप्लाई होगी, दो इंद्रिय पर भी, तीन इंद्रिय पर भी. तो डेफिनेशन क्या है? जो जानता है, देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव कहलाता है. तो एक इंद्रिय जीव को भी सुख दुख का अनुभव भी है, जानता भी है, देखता भी है. यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल गुरुदेवश्री देते हैं कि हम लोग जब आप इंडिया में आओगे तो आप लोग वहां कर तो नहीं, कर तो नहीं पता, जो चने होते हैं, चने आप जानते हो, चना होता है.
हाँ हाँ,
चना, वी ईट चना, राइट? तो उसमें उसको हम गर्म करते हैं, वो हम जब उसको गर्म करते हैं तो कुछ चने अपने आप फूट कर बाहर निकल कर आ जाते हैं, अपने आप उचक कर वो गर्म होने से. लाइक हमारा उनको बाहर निकालने का नहीं है, वी हैव टू, लाइक हम उनको फ्राई करते हैं एक तरीके से, बट कोई चना अपने आप बाहर निकल कर आ जाता है फूट कर. हम उसको गर्म कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो हम उसको फ्राई निकाल रहे हैं क्या? नहीं निकाल रहे. बट कोई चना अपने आप अपनी योग्यता से फूट कर बाहर आ जाता है, नहीं आ जाता है, फ्लोर पर गिर जाता है, बाहर आ जाता है. ऐसे ही वो स्थावर जीव है, उनको कोई बाहर निकालना नहीं चाह रहा है, लेकिन कोई अपनी योग्यता से जीव अपने पुण्य कर्म के उदय से अनंत पुण्य को लेकर, जब उसका अनंत पुण्य का उदय होता है तो अपने आप अपनी योग्यता से निकल कर आता है। उसके पास कोई, उसका कोई गॉड फादर नहीं है कि उसको आके बताए भैया, जैसे कि रावण का जीव है वो तीसरे नरक में था अभी, करेक्ट, रावण के जो जीव है उनको सब में सीता जी का जो जीव है, सीता जी और रावण आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो, सब राम लक्ष्मण रावण सीता, राइट, मानस निजुल, सो गए क्या आप लोग? हाँ जी, नहीं जी, सो गए? अच्छा नहीं जी, ओके। आपको रावण पता है कौन थे, सीता जी पता है कौन थे?
हाँ जी।
हाँ, तो रावण अभी थर्ड नरक में, तीसरे नरक में, ओके, सीता जी अभी स्वर्ग में है। तो क्या हुआ था, रावण अब जब सीता जी ने जन्म लिया स्वर्ग में, तब उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उनको पता पड़ा कि मैं कहाँ पर आई, तब उनको पता पड़ा अरे ये रावण, इसने मेरा अपहरण किया था और ये मेरे कारण नरक में, ऐसे परिणाम के कारण। तो सीता जी स्वर्ग से नरक पर गई उसको समझाने के लिए कि अरे देखो तुमने अपने परिणामों के कारण अपना भाव बिगाड़ा, अब अपने परिणामों को मत बिगाड़ो। सीता जी का जीव स्वर्ग से नरक में किसको समझाने गया, रावण को, कि तुमने अपने परिणाम बिगाड़े तो आज नरक गति में जन्म लिया है, अब अपने परिणामों को मत बिगाड़ो। अब ऐसा कोई सीता का जीव निगोदिया जीव के पास जाकर उसको समझा सकता है क्या, तुमने अपने स्वभाव की विराधना करी अब तुम ऐसे कर लो, कोई उसको समझाने आएगा क्या? नहीं आ सकता है, कहीं से स्वर्ग से भी नहीं आ सकता, केवली भगवान भी नहीं समझा सकते, समव शरण में भी अनंत निगोदिया जीव होते हैं, मतलब वातावरण में तो तीनों लोक में भरे पड़े हैं ना, लेकिन वो दिव्य ध्वनि को नहीं सुन पाती क्योंकि उनका इतना ज्ञान ही नहीं है। तो फिर उनका टोटल निकलना डिपेंड है उनके स्वयं के पुरुषार्थ पर। जैसे वो स्नेक का वो अपने लग के साथ वो एग बाहर निकल जाए, उसी प्रकार अपनी योग्यता से स्थावर पर्याय से बाहर निकलते हैं, नहीं तो अनंतानंत जीव आज भी निगोद में पड़े हैं और अनंत काल तक अनंतानंत जीव निगोद में ही रहेंगे, वो निकलेंगे ही नहीं अनंतानंत काल तक अभी भी। ओके, आई गेस हमने अपना टाइम बहुत एक्सीड कर दिया आज। तो अभी मेन बात ये करनी थी कि जो जीव दो इंद्रिय में आपको दिखते हैं ना, ये समझना कि वो बहुत पुण्यशाली है कि वो एक इंद्रिय में नहीं है, भले ही उनकी अभी कितनी बुरी हालत हो, लेकिन वो एक इंद्रिय जीव के दुखों की अपेक्षा बहुत सुखी है, इतना बुरा दुख एक इंद्रिय पर्याय में है। ओके, चलिए हम आगे की चर्चा, जो आगे की नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन हमारे लिए होमवर्क है आज सबके लिए। हमें एक इंद्रिय जीव पता है उसके पांच टाइप होते हैं, एयर वाटर ये सब होते हैं। अब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय संगी, इन सब के दो दो एग्जाम्पल आपको खोज कर लाने हैं। दो इंद्रिय जीवों में कौन कौन आता है, तीन इंद्रिय जीवों में आपने किसी को देखा, चार इंद्रिय जीवों में किसी को देखा, पांच इंद्रिय जीवों में किसी को देखा, आपको एग्जाम्पल सोच कर लाना है। ओके, मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से दो इंद्रिय जीव कौन कौन से पता है आपको, कौन से देखे आपने, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप किसी को जानते हैं तो आप किसी और से पूछिए, आप खुद कहीं से पढ़कर खोज कर निकालिए, रिसर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे दो दो एग्जाम्पल चाहिए। ओके, सबको समझा होमवर्क? मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि पंचेंद्रिय मनुष्य में क्या आएगा, हम, मैं, अनुभव पंचेंद्रिय जीव है, संगी। ओके, अब आपको पंचेंद्रिय एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे हर एक के आपको दो दो एग्जाम्पल लेके आने हैं। ओके,
हाँ जी,
हेलो, ठीक है, चलिए बाकी अब आगे की चर्चा आप लोग फिफ्थ तक याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो नेक्स्ट वाली लाइन है उसमें इन्हीं के एग्जाम्पल दिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इन्हीं के एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो वाली नेक्स्ट लाइन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब आप लोग दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव कौन है इसका पता करके आएंगे। ओके, चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, रिजुल आप कराओगे? चलिए हम सब हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, रिजुल जिनवाणी स्तुति।
जावानी के ज्ञान ते सुजलो कालोक सुबानी मसुक द्रून सदा दे गुदो।
नौ बार नमो कार्य। जस्ट वन थिंग, देखिए सारे बच्चों ने अभी तक यहाँ तक याद कर लिया है, हमको बच्चों से कुछ सीखना चाहिए, तो हम सभी यहाँ तक याद करके आए पिछली क्लास में, सब बड़े लोग, ओके कि आज की क्लास में बच्चों को याद था, बड़ों को याद नहीं था, ओके नेक्स्ट क्लास में टिल फोर्थ और फिफ्थ, बच्चे फिफ्थ तक याद करेंगे, बड़े लोग एटलीस्ट फोर्थ तक याद करके आएंगे, ओके
हाँ जी
ओके चलिए थैंक यू, जय जिनेन्द्र,
जय जिनेन्द्र,
जय जिनेन्द्र।